તારીખ 15-8-1994 શ્રી સમયસર ગાથા 206 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 197
अब इस गाथा में इसी उपदेश को विशेष कहते हैं। इसी उपदेश यानी ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करना, ज्ञानाभ्यास करने का उपदेश है इस गाथा में। शास्त्र का स्वाध्याय है, उसको भी व्यवहार से ज्ञान अभ्यास कहने में आता है। व्यवहार इसलिए कि शास्त्र पर द्रव्य है, इसलिए व्यवहार है, और उसमें भी उपयोग बाहर है। यहाँ इस प्रकार के ज्ञान अभ्यास की बात नहीं है। यहाँ ज्ञान स्वयं का वेदन करे और ये वेदन बार बार करे, ससंवेदन करे, उसी को ज्ञानाभ्यास कहने में आया है। और ये ज्ञानाभ्यास करने का उपदेश है इस गाथा में। निर्जरा अधिकार है ना, शुद्धि की वृद्धि कैसे होती है? निर्जरा माने शुद्धि की वृद्धि। फिर व्यवहार से द्रव्य कर्म खिर जाना, कर्म का परमाणु का खिर जाना को भी निर्जरा कहने में आती है। वास्तव में तो निर्जरा अशुद्धि मिट जाना और शुद्धि बढ़ जाना, उसी को निर्जरा कहते हैं। तो निर्जरा कैसे होती है? कि ज्ञानाभ्यास से होती है, ज्ञान का स्वसंवेदन होने से होती है। इस ऐसा उपदेश इस गाथा में करते हैं। एवं में हृदो नीचम संतुष्टो हुए नीचम एदम में एदेन हुए कितो रोदे तुम उत्तम सुखम। तुमको उत्तम प्रकार का सुख होगा। कैसा सुख होगा? उत्तम प्रकार का सुख होगा। उत्तम प्रकार का मैंने पवित्र सुख होगा, निर्मल सुख होगा, कषाय रहित अकषाय रूप सुख होगा, निराकुल सुख होगा। आकुलता मिल जाएगी, सर्व प्रकार की आकुलता मिल जाएगी। ऐसा ज्ञानाभ्यास करना तो सुख का कारण है। ज्ञानाभ्यास कारण है और सुख की प्राप्ति उसका कार्य है। ऐसे कारण कार्य की श्रृंखला लिया है गाथार्थ। ये भव्य प्राणी किसको कहते हैं? भव्य प्राणी को कहते हैं, उत्तम मुमुक्षु को बात करते हैं। उत्तम मुमुक्षु को बात इसलिए करते हैं कि उसको ज्ञान कला सिखानी है। ज्ञान कला कैसे होती है, कैसे होती है ज्ञान कला और उसकी विधि क्या होती है, वो भी विषय इस गाथा में चला है। वो कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, भव्य प्राणी मैंने जो संसार तिरने के लिए समीप आ गया है, जिसका संसार सागर का किनारा बहुत नजदीक है, बहुत समीप है, काल में वो मुक्ति को, निर्वाण पद को, मोक्ष पद को प्राप्त करेगा, ऐसा देख करके उसको भव्य प्राणी कहने में आता है। भव्य तो बहुत है, जगत में भव्य प्राणी अनंत अनंत हैं, लेकिन कितने तो अभव्य जैसे हैं, तो अभव्य जैसे हैं, और कितने दुर्भव्य होते हैं, और कितने आसन्न भव्य मैंने समीप मुक्तिगामी होते हैं, ऐसे तीन प्रकार के भव्य प्राणी होते हैं। तो यह तीसरा वाला लिया है कि ये भव्य प्राणी तुम इसमें ज्ञान में, इसमें माने ज्ञान में नित्य रत अथवा प्रीति वाला हो, तुम ज्ञान में ही रुचि वाला हो, ज्ञान में ही प्रीति वाला हो, तेरा प्रेम तेरे ज्ञान में होना चाहिए। क्या कहते हैं, कहते हैं कि तेरा जो प्रेम है वो कहाँ होना चाहिए, तेरे ज्ञान में होना चाहिए। कौन सा ज्ञान, जो वेदन रूप ज्ञान है उसमें तेरा प्रेम होना चाहिए, वो तेरा स्वरूप ऐसा है। इसलिए अन्य विषय में प्रीति रुचि है वो दुख का कारण है, अन्य व्यक्ति में रुचि प्रीति है वो भी दुख का कारण है। उतना फर्क होगा कि पहले जो संसार के पदार्थ और संसारिक व्यक्ति के प्रति प्रेम रुचि था, वो पलट करके देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष के प्रति प्रेम आ जाएगा। वो तो उनका घड़ा आटा हुआ, अब सीधा होने के लिए अपने ज्ञान में रुचि प्रीति, क्योंकि वो सुख रूप है, ऐसा ज्ञान है वो सुख रूप है। इसलिए तो इसमें नित्य और संतुष्ट हो, और ऐसे ज्ञान में ही इतने संतुष्टि तृप्ति होनी चाहिए। उसमें ज्ञान में तुझे संतोष मिलेगा, और कहीं जगह परिणाम जाएगा, उपयोग जाएगा, संतोष नहीं होगा, असंतोष होता रहेगा, कहीं भी तृप्ति नहीं होगी। और इससे तृप्त हो तो संतुष्ट भी हो और तृप्त भी हो, तो संतुष्ट होता है वही तृप्त होता है। ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख होगा, ऐसा करने से तुझे उत्तम सुख होगा। सुख का तो प्रयोजन है, सभी जीव को सुख का प्रयोजन है, किसी को दुख नहीं चाहिए और सबको सुख चाहिए, परंतु सुख नहीं है वहां से सुख लेने का जो प्रयास है, मिथ्या समझ से, उल्टी समझ से, विपरीत समझ से, तो सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। उसमें असंतोष नहीं होता है, उसमें भी संतोष होता है, उसमें असंतोष नहीं होता है, क्योंकि फिर ये जो अनन्य प्रेम है उसमें आत्मा और सत्पुरुष भिन्न भाव में नहीं रहे, अभिन्न भाव में आ जाते हैं। इसलिए वहाँ दो नहीं रहता, वहाँ एक हो जाता है, दो नहीं होता है, उतना प्रेम होता है। इसलिए वहाँ असंतोष होने का कारण नहीं है, ऐसी बात है। हाँ, भाव में आगे काम हो जाएगा, फिर काम नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो एक ऐसी समीपता आ जाती है, उतनी निर्मलता आ जाती है कि काम होना सहज है, उसमें निर्मलता बढ़ जाती है, दर्शन अधिक मात्रा में कमजोर हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है, ऐसा बनता है। वो तो उनको तो पहले निर्मलता बहुत आ गई थी, गुरु ने मिले तो उसी वक्त काम कर लिया, देर नहीं लगी उनको, पहले मीरा में निर्मलता आ गई थी, उनको नहीं मिले थे तो मीरा वेदना आ गई, तो मेरे वेदना के कारण से निर्मलता हो गई। संयोग होता है तो संयोग में प्रेम बढ़ जाता है, तो उससे निर्मलता बढ़ जाती है। संयोग और वियोग सत्पुरुष के प्रति के जो प्रीति के प्रेम के परिणाम है, वो तो निर्मलता बढ़ाने का ही कारण बनता है, चाहे संयोग में हो चाहे वियोग में हो, ऐसी बात है। सब में ऐसा ही है, काय का कानून कायदा सबका एक ही होता है, दो अभिन्न भाव होता है। तो गुरु गुण संभालना में सब को मिलेगा, गुरुदेव का माता जी का समझाना नहीं पड़ेगा कैसे भक्ति भाव है, कैसा अनन्य भाव है, वो वहाँ दिखने को मिलेगा। हाँ, कितने गुण गाए हैं महाविद्य में से, इधर आया तो भी गुण गाए, थानक वासी में जन्मे इसका भी गुण गाया, सब पहलू गुण गुण का ही दिखता है, कोई अवगुण का पहलू नहीं दिखता है। बहुत बातें लिया है, बहुत लिया है। तो कैसे सो जाती है, जिसके प्रति उतना अनुराग होता है उनका एक अवगुण भी दिखता नहीं। और गुरु का अवगुण तो दिखेगा कि दिखेगा भी कहां से, गुरु का तो अवगुण शिष्य को कभी स्वप्न में भी दिखता नहीं है, तो जागृत में तो दिखेगा ही कहां से। सवाल ही पैदा नहीं होता। जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आत्मा और जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ सदगुरु, ये अभिन्न भाव होने से फिर किसकी परवाह करे कोई। वैसे ही कोई अपना स्वार्थ से दूसरे की परवाह करता है, जगत में भी नहीं करता है। जिसको बहुत माल मिल जाता है तो किसी की परवाह करता है। आपको बहुत पैसा कमाने के लिए फॉरेन जाने का कोई प्रसंग हो तो यहाँ का सबका छोड़ करके जाते कि नहीं, ये उसकी शादी है, उसका मरण है, उसका वो है, वो उसका जन्मदिन है, वो सब कई प्रकार के सामने आए हो तो कोई बात नहीं। सब लोग आप लोग पद पीछे निपटा लेना, बोल देना बहुत मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण था, उधर जाना बहुत जरूरी था। तो क्या निर्वाण पद में जाना जरूरी नहीं है क्या? निर्वाण पद की प्राप्ति का मूल्य कोई इससे कम होता है क्या?
बड़ा है,
दो पांच हजार करोड़ रुपया का मूल्य ज्यादा या निर्वाण पद का मूल्य ज्यादा? पांच हजार करोड़ मिलता हो तो किसी की परवाह करता है संसार में कोई है? कोई नहीं करेगा किसी
का।
पाँच पच्चीस लाख का आजकल हिसाब कम है, लेकिन पाँच दस हजार करोड़ मिलता है। पाँच दस करोड़ नहीं, पाँच दस हजार करोड़ किसी की परवाह करे तो कुछ नहीं है, इसके आगे ये कुछ नहीं है। क्या है, परिवार वाले का स्वार्थ है, परिवार वाले का भी स्वार्थ है। तो परिवार वाले का विरोध तो नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं जाएगा तो धक्का मार के काम उसको भेजेगा ये बात होगी। परिवार वाले का तो ऐसा है कि एक आदमी को 100 रुपया की नौकरी है, इतना एक महीने में 100 मिले, फिर उसको बोले कि भाई तुमको सुबह 3:30-4 बजे आना है, 1 घंटा के लिए 100 रुपया देंगे। पर वो कहेंगे मुझे तो 3:30-4 बजे तो बहुत नींद आती है, मैं नहीं आ सकता, कोई आलसी ऐसा होता हो। तो परिवार वाले उसको धक्का मारेगा कि नींद बाद में ले लेना तुम आकर के, 1 घंटा चले जाओ उधर, 100 रुपया तो महीने में कमा तो 1 घंटे में मिलता है, 100 रुपया के लिए भी धक्का मारेगा ये परिवार का हिसाब किताब है सब उनको सब स्वार्थ के सगे हैं। कितने से हैं? सब स्वार्थ के सगे हैं। वो पता चल जाएगा, कोई नुकसान कर दो पता चल जाएगा, कोई नुकसान कर दो, कोई गलती से नुकसान हो गया तो परिवार वाले क्या बोलते हैं पता चल जाएगा कि कितना प्रेम है, प्रेम है या स्वार्थ है उसका पता लग जाएगा। जो स्वरूप है वो बाहर आ जाएगा, तुमको अक्ल नहीं है, तुमको बुद्धि नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं थी, वो कर दिया वो कर दिया, कई प्रकार के बुलाने सुने सुनने को मिल जाएगा। टीका, हे भूमियो, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। क्या क्यों प्रीति करना, ज्ञान में प्रीति क्यों करना है, ये टीका में खुला है। गाथा में वो खुला नहीं है, टीका में वो खोल दिया है कि ये तो परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। यह जो वेदन रूप ज्ञान है वो तो अगर स्वपने वेदने में आता है तो वो आत्मा है, वहां उसको पर्याय कहते हैं नहीं है, वहां उसको आत्मा कहते हैं। स्वरूप से वेदन में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। गुरुदेव का वचनामृत 733, परमात्मा अनुसार 733 में वो बात है। इतना ही परमात्म स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है, ये वेदन रूप जितना ज्ञान है उतना ही वास्तविक आत्मा है, परमार्थिक आत्मा है, सच्चा आत्मा, निश्चय आत्मा यही है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही प्रीति रुचि प्रेम प्राप्त कर, वही अपना सर्वस्व है, आत्मा है, परमार्थ स्वरूप आत्मा है, मतलब वही अपना सर्वस्व है। इसको छोड़ करके अपना अपना अपन कहीं करने योग्य नहीं है और अपना कोई चीज है भी नहीं। वहां तो थोड़ा स्पष्टीकरण दिया है कि द्रव्य सामान्य से नहीं आलिंगित ऐसे शुद्ध पर्याय वह आत्मा है, तो एक दूसरी बात है। यहाँ तो एक ज्ञान से निर्जरा कैसे करनी, वो विधि की बात चल रही है, विधि की बात चल रही है। ज्ञान से बात करता है, आत्मा की बात कहाँ से करते हैं, ज्ञान से करते हैं। क्यों, कि वही एकमात्र कार्य पद्धति है, काम करने के वही चैनल है, दूसरी कोई चैनल नहीं है, ओनली चैनल। यहाँ से तुम आत्मा में चले जाओ, ये सामान्य रूप ज्ञान है, वेदन रूप ज्ञान है, उतना ही आत्मा है, बस सात महीना से मिल जाएगा तुमको और दूसरी जगह से कहीं से नहीं मिलेगा, ये बात भी साफ है। वही आत्मा है और वही आत्मा है, वही ज्ञानानुभव, वही आत्मानुभव है। वो बात तेरा कलश में बोल दिया कि आत्मानुभव है, वो ज्ञानानुभव है, बात तो यहाँ से लिया है। लोग जिसको आत्मानुभव कहते हैं वही ज्ञानानुभव है, आत्मानुभूति इति ज्ञानानुभूति किल। देखो तेरा कलश में क्या कहता है, पंद्रगाथा के पहले का कलश है। बार तेर तीन कलश है ना, आत्मानुभूति इति पहले पद में, दूसरे पद में ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति है यह ज्ञानानुभूति है, क्योंकि यह शुद्ध नयात्मिका है। तो अनुभूति वो कैसी है, शुद्ध नयात्मिका। देखो वो प्रमाण का पक्ष वाले को ये बात नहीं बैठेगी, अनुभूति शुद्ध नयात्मिका ली है, प्रमाणात्मिका नहीं लिया है। नए से अवलंबन लेते हैं तो प्रमाण हो जाता है, लेकिन बिना नए प्रमाण होता नहीं, होता नहीं, क्योंकि एक पहलू को मुख्य करना पड़ता है, दूसरे पहलू को त्रिकाणी को मुख्य करना पड़ता है और सबको गौण करना पड़ता है, इसलिए वो शुद्ध नहीं आत्मिका है और नए प्रमाण के साथ होता है। बिना प्रमाण नहीं तो सच्चा नहीं होता नहीं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मानुभव है वो प्रमाण का ही विषय है, नहीं का विषय है नहीं, या तो नयात्मिका शब्द लिया है। आत्मानुभूति इति शुद्ध नयात्मिकाया नानानुभूति में के लिए, वास्तविक में ऐसा जान करके तो वो क्या करेगा, निवेश एट प्रवेश, निवेश का अर्थ वेश्य, प्रवेश दाखिल होना, अच्छी तरह से प्रवेश करना, दाखिल निवेश करना। आत्मना आत्मने, आत्मा द्वारा आत्मा में प्रवेश करना, किस तरह से, सुनिष्प्रकम्पम, निश्चल रूप से, कंपाइमन हुए बिना, हिचकिचाट हुए बिना, स्थिरता से प्रवेश करना है। और एको अस्ति नित्यम अवबोध घन समन्तात्, यही सदा सर्वदा एक ऐसा ज्ञान घन आत्मा है। या तो थोड़ा भी फेर पड़े तो प्रेत हो जाता है। क्या कहते हैं, ये भव्य इतना ही परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना यह ज्ञान है। अब देखो आचार्य महाराज ने कितना सरल कर दिया कि तुम्हारे पास ज्ञान तो प्रकट है पर उसमें स्वपना करना उतना तुम्हारा कार्य है। वो कैसे, क्यों कहते हैं कि ज्ञान भेदन होने पर भी स्वपना और जगह कर रखा है उसको छुड़ाने के लिए, कि तुम जहां तुम हो वहां स्वपनापन करो ना, जहां तुम्हारा अस्तित्व नहीं है वहां अपनापन क्यों करते हो, पर करते हो तो मार खाते हो। दरवाजा नहीं है दीवार है, दरवाजा छोड़ करके दीवार से जाना चाहे तो क्या होगा, निमड़ा हो जाएगा, जा सकोगे नहीं। कितनी बात है, पत्नी इतनी भूल है, जरा सी भूल में पूरा संसार है, और जरा सी भूल मिटने से मोक्ष है। ज्ञान तो सबों के पास है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है संसार में कि जिसके पास ज्ञान नहीं है। और ज्ञान सामान्य में वेदन भी आबाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है, लेकिन अनादि बंध के वसात परम एकत्व बुद्धि का निश्चय है। तो यहाँ निश्चय से बात लिया, हाँ भी निश्चय शब्द रखा है 17-18 में, कि पर के साथ एकत्व का निश्चय है, मैंने स्वपने का निश्चय है तो अनुभव में स्वपना होता, अनुभूति में वेदन में स्वपना आता नहीं है। और भीतर में जो वेदन चल रहा है उसमें अपना अस्तित्व है, अस्तित्व है ना, अपनापन करे उधर, अपनापन छोड़ करके उसकी उपेक्षा करके, तो बस उतना ही सत्य आत्मा है, आत्मा का पता लग गया, जाओ। उतना सरल कर दिया है, और 17-18 गाथा भी सरलता के हिसाब से लिया है, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा ही सदा शब्द लिया है, निर्विकल्प अनुभव हुए तब नहीं सदा ही, सबको आबाल गोपाल माने सबको अनुभव में आ ही रहा है। किंतु अनादि से पर के साथ एकत्व का निश्चय है तो अनुभव में आता हुआ भी अनुभूत होता नहीं है, अनुभव मालूम नहीं पड़ता है। बस निश्चय बदलो, निश्चय निश्चय लेंगे, तीनों पद में निश्चय लेंगे। ऐसा निश्चय करके पहले निश्चय करना, फिर अनुभव होगा। निश्चय होने से क्या होगा कि ज्ञान मात्र में ही सदा ही रीति रति प्रीति रुचि हो जाएगी। ऐसा में ज्ञान स्वरूपी संवेदन स्वरूपी अनुभवांश से निश्चय होगा, दूसरा संकेत, तो आत्मा की अनन्य रुचि पैदा होगी। क्यों, कि पूरा अनंत गुण निधान का पता लगा, और अनंत गुण में भी अनंत सुख का निधान है उसका पता लग गया। तो सुख के लिए तो मारा मारा फिरता था, सुख पाने के लिए क्या क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है, अधिक से अधिक पुण्य भी किया, अधिक से अधिक पाप भी किया, सातवीं नरक में जाने का पाप भी इसलिए किया कि सुख चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पुण्य भी इसलिए किया द्रविलिंगी साधु दीक्षा लेकर के, सुख चाहिए, दोनों को सुख चाहिए, पाप करने वाले को भी सुख चाहिए और पुण्य करने वाले को भी सुख चाहिए, लेकिन भूले हैं वो, न पाप करने से सुख मिलता है न पुण्य करने से मिलता है। तो ये विधि दिखाई, ऐसा निश्चय कर के ऐसा ज्ञानानंद स्वरूपी यानी स्वसंवेदन स्वरूपी सुखधाम आत्मा है तो उसमें प्रेम होगा, अनन्य प्रेम होगा। उतना प्रेम आएगा, उतना प्रेम आएगा कि उसे अलग पर्याय, प्रेम करने वाले पर्याय उसे अलग रह सकेगी नहीं, तो अभेद हो जाएगी, भाव से अभेद हो जाएगी। पर्याय तो पर्याय रहती है लेकिन भाव से अभेदता वो साथ लेगी, वो साथती है। हाँ वो निश्चय करना, ऐसा पहला निश्चय करना, तो निश्चय करने से उसमें प्रीति रुचि की प्राप्ति होगी, तो होती है उसको वैसा कर, ऐसा कहने में उपदेश में आता है, तो उपदेश की गाथा है, तुम ऐसा कर ऐसा कर ऐसा मत कर, ऐसा इम्परेटिव टोन कहते हैं उसको, क्या आदेशात्मक ध्वनि, तो उपदेश का ध्वनि होता है वो आदेशात्मक है, लागू करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। हाँ तीसरा प्रकरण लिया है वो स्वरूप निश्चय करना लिया है, अत्यंत महिमा आएगी, कितनी महिमा आएगी, जितना महिमावंत पदार्थ आत्मा है उतनी महिमा ज्ञान में प्रतिभाषित होने से महिमा अंदर से आएगी, और ऐसी महिमा आने से सौगुण स्थान में केवली से भी आगे मेरा स्वरूप है, ऐसी महिमा आने से जगत का किसी पदार्थ की महिमा रहेगी नहीं, छूट जाएगी, जगत के सब पदार्थ की महिमा छूट जाएगी, कितने सब के सब पदार्थ की महिमा छूट जाएगी, खुल जाएगा। और दूसरा कहते हैं कि इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है, जितना यह ज्ञान है उतना आत्मा भी है, और आत्मा है उतना ही नहीं, उतना ही सत्य कल्याण है। तेरे आत्म कल्याण करना है ना, आत्मा तो है तेरे पास, तू ही आत्मा है, लेकिन कल्याण नहीं है, अकल्याण है, इसलिए चार गति में भटकते भटकते दुख को भुगता है। अभी महाभाग्य से मनुष्य हुआ है, यहाँ अगर विवेक नहीं किया तो फिर ये जीव जंतु में पशु पक्षी में चला जाएगा, पशु को जाने के कोई रोक सकेगा नहीं, मरने से कोई रोक सकता है, फिर विग्रह गति में जाने से कोई रोक सकता है, यहाँ की मुदत पूरी हुई, मुदत लेके आया है, क्या इसमें एक सेकंड का भी फिर पड़ेगा
नहीं,
कोई भी एक सेकंड ऐसे आएगी मनुष्य तो छूट जाएगा, मनुष्य देह भी छूट जाएगा और मनुष्य की योग्यता भी छूट जाएगी, मनुष्य तो इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है, जितने स्वसंवेदन ज्ञान है उतना आत्मा है, वो स्वयं कल्याण स्वरूप है, वो स्वयं कल्याण स्वरूप है, उसमें अकल्याण नहीं है, कहीं कोई क्लेश नहीं, अक्लेश परिणाम है, अक्लेश भाव है, वो एकदम शांत निराकुल भाव है और वही कल्याण है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा संतोष को प्राप्त कर, तेरे पास ज्ञान है, ज्ञान मात्र से, ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र शब्द लेते हैं, ज्ञान मात्र लेने में न द्रव्य लेना है न गुण लेना है न पर्याय लेना है, जो मूल स्वरूप है उसमें उसको ज्ञान ज्ञान मात्र कहने में आया है, है वेदन रूप ज्ञान, लेकिन उसमें जो सामान्य है वो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र उतना ही लेना है बस, ज्ञान मात्र कोड वर्ड है समय सार का, क्या समय सार का ये कोड वर्ड है, पूरा समय सार बोल दिया, समय सार पूरा एक शब्द में ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, बस ज्ञान मात्र कह करके द्रव गुण पर्याय का भेद को निरस्त कर दिया है एकदम। पहले बोल में बोले ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही रीति प्रीति रुचि प्राप्त कर, तो नहीं समझते उसको वेदन रूप ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, अनुभूति स्वरूप ज्ञान है, ऐसा नहीं समझते, इसलिए समझाने को बोलना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान मात्र बोलो तो आ जाता है, वरना आदत पर्याय बुद्धि में पर्याय की मुख्यता की पड़ी है तो वेदन से पर्याय को पकड़ेगा, ये नहीं बात करना है, इसलिए ज्ञान मात्र ऐसा समझ लिया है, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, भिन्न ज्ञान ऐसा लेना है। मात्र कहने से ज्ञानमय आत्मा, जो ज्ञानमय आत्मा द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त है, द्रव्य में भी व्याप्त है, गुण में भी व्याप्त है और पर्याय में भी व्याप्त है, लेकिन तीनों में से एक भेद उसका नहीं लागू पड़ता, निर्भेद है, तो निर्भेद को अभेद को सामान्य को ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञाता का भेद भी नहीं, या द्रव्य पर्याय का भी भेद नहीं, और द्रव्य पर्याय रूप भी नहीं, इसका भेद भी नहीं, ऐसा रूप भी नहीं, इसलिए पंचाध्यायी के कारण उसको अनुभव स्वरूप कहा है, क्या कहा, अनुभव स्वरूप, न द्रव्य रूप न पर्याय रूप, ऐसा करके लिया। कैसा है तो पंडित राजमल जी कहते हैं कि जैसा है वैसा है, जा जैसा है वैसा है, तुम अनुभव करके समझो जैसा है वैसा है, वही आत्मा है, वही कल्याण स्वरूप है, कल्याण में भी सत्य कल्याण, वरना तो क्या बोले, अभी हम दरिद्र थे, अभी लाखों करोड़ों रुपये हो गए तो हमारा कल्याण हो गया, वो झूठा कल्याण है, सच का सत्य कल्याण नहीं है, क्यों कि वो आया उसको लेने की आकुलता, भोगने की आकुलता, और गई तो जाने की भी आकुलता, आकुलता आकुलता और आकुलता, इसलिए वो सत्य कल्याण नहीं है, कल्याण को विशेषण लगाया है, सत्य शब्द तीनों में लगाया, सत्य आत्मा वही है, सत्य कल्याण भी वही है, ऐसा लिया है। जितना यह ज्ञान है, ये ज्ञान है उतना ही असंतुष्ट मत हो, तुम्हारे पास ये ज्ञान है, क्या करो, हम तो अज्ञानी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वो बात अभी रहती नहीं है, ज्ञान है कि नहीं तुम्हारे पास, ज्ञान है तुम्हारे पास, उसको पहचानो, निश्चय करना मतलब उसको उसको पहचानो, पहचानने से तुमको वो आत्मा है ऐसा मालूम पड़ेगा, वो सत्य कल्याण स्वरूप से ऐसा मालूम पड़ेगा, और यही अनुभव करने योग्य है, अनुभवनीय है ऐसा मालूम पड़ेगा, तीन बात लिया है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही संतोष को प्राप्त कर, मैंने मुट्ठी में सोना था वो बता दिया, क्या किसी ने कहा हमारा सोना मिलता नहीं है, खो गया है, मुट्ठी में था, देख तेरी मुट्ठी में है, मुट्ठी भी उतनी दूर है, ये ज्ञान उतना दूर नहीं है, ज्ञान इतना दूर नहीं है, चतुरांगुल है दृग से मिले हैं, बस चार आंगल भी दूर नहीं है, दृष्टि के आगे देखो तो चार आंगल भी दूर नहीं है, स्वयं तो है, हाँ दृष्टि को उल्टा नहीं है, मीरा ने एक पद गाया है, उलट भाई मेरे नैनन की गुरु की प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ कि मेरी दृष्टि पलट गई, दृष्टि पलट गई है। अभी मेरी दृष्टि जो पहले थी वह अभी मेरी दृष्टि नहीं रही। संतोष को प्राप्त कर इतना ही तीसरा पदक लेते हैं कि इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। दूसरे का अनुभव मत करो, तुम दूसरा कोई अनुभव करने योग्य है नहीं और अनुभव कर सकता भी नहीं है। ये भी एक वस्तु स्थिति है, वस्तु के स्वरूप की मर्यादा है कि ज्ञान स्वयं को छोड़कर दूसरों को अनुभव कर सकता नहीं है, अनुभव नहीं कर सकता, वेद 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 सकता भी नहीं, भोग सकता भी नहीं। तीनों बात आ जाती है, फिर भी मानता है तो मार खाता है, दुखी होता है, और कुछ होता नहीं है। हाँ वो भ्रांति है, वो भ्रांति है। ठंडी गर्मी जानने में आती है, ज्ञान का टेम्परेचर ज्यादा कम होता नहीं है। अगर ज्ञान को ठंडी गर्मी लगती होती तो ज्ञान का भी टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाता। ज्ञान को टेम्परेचर आता है या शरीर को आता है? शरीर को आता है। ज्ञान को टेम्परेचर आता नहीं है। वो टेम्परेचर होना, ज्यादा कम होना, वो परमाणु के पर्याय होती है, ज्ञान के पर्याय नहीं होती। ज्ञान तो उससे भिन्न जानने का, जानने वाला पदार्थ है। देख लेना भीतर में, ज्ञान को देख लेना कि ऐसा है कि नहीं है, कि ऐसा ही है। देखिए अपने पर्याय में अनादि से रागादि भाव हो रहे हैं, निगोद में प्रचुर कसाई कलंक हुआ, कितना बहुत कसाई हुआ, बहुत कसाई करके तो गए निगोद में और वहां भी बहुत कसाई रहा। ज्ञान असंग तत्व रहा, फिर भी ज्ञान असंग तत्व रहा। जो इसका कहलाने वाला रागादि कसाई है उससे भी वो लेपाईमान नहीं हुआ, ऐसा असंग तत्व है, तो फिर ठंडी गर्मी के परमाणु से तो कैसा संग इसका होगा? दूसरे पदार्थ से तो संग उसका होगा ही कैसा, तो हो ही सकता नहीं है। इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है। ये अनुभवनीय शब्द है मूल में, क्या अनुभवनीय है वो संस्कृत में ऐसा सुना, एतादेव सत्यम अनुभवनीयम, अनुभव के योग्य, अनुभव करने योग्य। यावत एतद् ज्ञानम् वेदन से ऐसा निश्चय करना, विचार से नहीं। देखो समय सार में लिखा है, वो लिखा है, ऐसा वचन है आचार्य महाराज का, ये वचन है। और ये वचन हमको सही मालूम पड़ता है, हमारे विचार में, हमारे मत में उसमें कोई असम्मति नहीं होती, सम्मत होता है, इसलिए हमारा भी ऐसा ही मत होता है। वहां तक ये बात चलने वाली नहीं है। वेदन से निश्चय करो, मात्र विचार से निश्चय करो नहीं, किंतु अनुभवांश से अनुभवनीय ज्ञान का, वेदन ज्ञान का निश्चय करो। क्योंकि अनुभवनीय है इसका निश्चय अनुभव से होता है, अनुभव अंश से होता है, बिना अनुभव अंश से इसका सही निश्चय, सच्चा निश्चय नहीं हो सकता। इसका निश्चय करना है, जो अनुभूति स्वरूप है इसका निश्चय करना है, अनुभूति स्वरूप का निश्चय करना है, अनुभव से होगा। बिना अनुभव अनुभूति स्वरूप का निश्चय हो सकता नहीं है। कोई कहेगा कि तो ज्ञानियों को अनुभव है, हमको तो नहीं है, तो कह नहीं तेरे भी है तेरे पास भी अनुभवांश तो है ही, लेकिन तेरी दृष्टि उल्टी है तो तुझे मालूम पड़ता नहीं है। तो प्रश्न आता है ना कि इतना महान आत्मा है लेकिन दिखता कहीं क्यों नहीं है, तो समुद्र इतना बड़ा है लेकिन पीठ देकर खड़ा हो जाए, हाँ तो फिर बोले कि इतना बड़ा समुद्र मुझे क्यों नहीं दिखता है, है? कैसे दिखेगा? तुम उल्टा होकर के बात करते हो तो तुमको दिखने वाला नहीं है। ज्ञान का वेदन को ग्रहण करने के लिए जो ज्ञान विशेष पर सन्मुख है उसको कुछ अंश में स्वसन्मुख होना पड़ता है, तब उसको ज्ञान का अनुभवांश मालूम पड़ता है। पर मालूम पड़ता है तो पूरा आत्मा का निश्चय हो जाता है, पहचान पूरे के पूरी हो जाती है। एक सेकंड में स्वसन्मुख होते ही आत्मस्वरूप का पता लग जाता है, मेरा आत्मा ऐसा है, अनंत महिमावंत साक्षात सिद्ध पद स्वरूप वो पता चल जाता है। पर पता चल जाने के बाद पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, जहां तक पता नहीं है वहां तक मुश्किल है। एड्रेस मिल गया फिर तो पहुंच जाता है, एड्रेस नहीं मिले तो आप पास में हो तो दूर जाएगा, ढूंढने के लिए दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, मैंने ग्रंथ में से ढूंढेगा, मंदिर में ढूंढेगा, और जगह कहाँ आत्मा मिलेगा, एकांत में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, है अपने आप में। हाँ संदेह छूट जाएगा, सच्चा मार्ग मिलने से तो संदेह कैसा रहेगा। जो अपने स्वयं के अनुभव से अनुभव गोचर होता है उसमें संदेह कैसा रहा, कैसा रहेगा, छूट जाएगा संदेह तो छूट जाएगा, अनेक प्रकार की जो भ्रांति थी वो भी छूट जाएगी। मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ, फलाने हूँ, सब छूट जाएगा, मैं आत्मा हूँ। पर्याय बुद्धि एकदम शिथिल हो जाएगी, टूटने की तैयारी हो जाएगी पर्याय बुद्धि की, तो निश्चय होते ही, निश्चय होता है साथ साथ निश्चय बल भी होता है। क्या निश्चय होता है तो साथ साथ निश्चय बल होता है, यानी चैतन्य वीर्य की स्फुरणा यहाँ से पैदा होती है। वो सब लिया है तीसरे प्रकरण में, सब लिया है गुरुदेव ने भी लिया है 210 में, चैतन्य वीर्य की स्फुरणा होती है, नया उछाल आता है भीतर में से, एक नया उछाल आता है, ये मेरा स्वरूप निश्चय के साथ निश्चय बल। तो ज्ञान बल और वीर्य बल, पुरुषार्थ का बल, दो ताकत एक साथ खड़ी हो गई, पर अवरोध करने वाला जो मिथ्या भ्रांति थी या दर्शन हुआ है वो कमजोर पड़ गया, दुश्मन की कमजोरी हुई और स्वयं बलवान हुआ। फिर कार्य नहीं होने का क्या कारण है, कि फिर कोई कारण है नहीं, कोई कारण नहीं है। फिर ये स्वाध्याय इसलिए है, क्या
स्वाध्याय,
स्वाध्याय पहचान करने के लिए है, दूसरे कोई कारण से स्वाध्याय है नहीं। खोज चलाता है तो कैसे कैसे वो खोज में मदद करता है शास्त्र वचन, वही देखना है। इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है, इसलिए दूसरा ज्ञान को छोड़ करके दूसरे का अनुभव करने का वृथा प्रयत्न छोड़ देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके, ऐसा निश्चय होगा तो प्रयत्न छूट जाएगा दूसरा, दूसरा ज्ञान मात्र से ही सदा ही तृप्ति प्राप्त करते थे, तृप्ति होगी। अनादि से तू अतृप्त रहा है, क्या अनादि से सब कुछ मिला, देवलोक में बड़ा देव भी हुआ, मनुष्य में बड़ा राजा भी हुआ, श्रीमंत हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छे से अच्छा पंचेंद्रिय का संयोग भी मिला, लेकिन तृप्ति एक अंश में भी हुई नहीं है। अतृप्त 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 रह जाएगा। कहीं यहाँ से तो तृप्ति तुझे मिलेगी, ऐसा निश्चय करने से ज्ञान मात्र से ही तृप्ति प्राप्त कर, यानी ज्ञान मात्र से ही तृप्ति हो जाती है। तो आज्ञार्थ जो वचन है उसमें कर ऐसा कहने में आता है, उसमें कोई कर्तृत्व बुद्धि का उपदेश नहीं है। अकर्तापना रह करके बात है, कर ऐसा कहते हैं फिर भी अकर्तापना उसमें रखा है, कर्तापने का ये उपदेश नहीं होता है। जो आज्ञार्थ या उपदेशात्मक या आज्ञा आज्ञार्थ दो प्रकार के वचन होते हैं, उसमें ऐसा कर्तव्य है ऐसा अकर्तव्य है ऐसा कहने में आता है। फिर भी कर्ता बुद्धि से कोई पर्याय करने का मूल में उपदेश नहीं है, अकर्ता हो करके सहज हो जाता है इसकी बात है, लेकिन जो कर्तृत्व में खड़ा है उसको उसकी भाषा में समझाया है, जैसे बालक को बालक की भाषा में समझाने में आता है, वैसे अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाने में आता है, मलेच को मलेच की भाषा में समझाने में आता है, उस तरह से। इस प्रकार सदा ही आत्मा में रत होने से, आत्मा में संतुष्ट होने से और आत्मा में तृप्त होने से, ये भी क्रम है, संतुष्ट होता है और तृप्ति होती है। तो तुझको वचन गोचर, वचन अगोचर सुख प्राप्त होगा, वचन गोचर नहीं, वचन अगोचर लेना है, वाचाम अगोचरम, हिंदी में वचन गोचर ऐसा सुख लिखा है, गुजराती में अगोचर लिखा है ना, यहाँ मिसप्रिंट है। संतुष्ट हो इसका मतलब वो है कि पहले तो हम क्या करें, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम क्या करें। तो कहते हैं कि तुम उतना निश्चय कर के तेरे पास तेरा कल्याण है, कल्याण स्वरूप आत्मा तुम ही हो, ज्ञान के माध्यम से तुम देख लो, ज्ञान मात्र के माध्यम से तुम देख लो। तो तुम्हें मुझे कोई साधन चाहिए, मुझे अनुकूलता चाहिए, उतना काम हो जाए तो फिर मैं करूं, वो बात रहने वाली नहीं है। क्या है, जीव बहानाबाजी बहुत करता है, क्या करता है, काम करने की रुचि नहीं है, रुचि है तो बहानाबाजी करेगा, क्या करे, अभी ऐसा उदय चल रहा है, ऐसा उदय पूरा हो जाए ना तो हम करेंगे, ये बिल्कुल बहानाबाजी है। पर खास करके प्रतिकूलता का बहाना बहुत बताता है। तो ज्ञानी तो कहते हैं कि प्रतिकूलता ही तेरा कार्य करने का अच्छे से अच्छा मौका है, उसमें तुम कार्य नहीं करने के बजाय बहाना बताता है तो मौका चूक जाता है और वो तेरी बददानत को प्रकट करता है। तो दीपचंद जी काश्मीरवाल तो थोड़ा कठोर शब्द बोलते हैं कि ये तेरी हराम जादी है, क्या कहते हैं, ये तेरी हराम जादी है, तुमको काम करना नहीं है और बहानाबाजी करता है, ये इस मार्ग में ऐसा चलने वाला नहीं है, ये तेरी अनीति है, महाअनीति है, ये जिन मार्ग में ऐसी अनीति संभव है नहीं, ऐसा कहते हैं। प्रतिकूलता तो अच्छे से अच्छी बात है, आना ही चाहिए, आने आए जब तो पता चलेगा कि संसार कैसा है। भगवान भगवान ने कृपा किया है। अगर प्रतिकूलता नहीं आती तो भगवान भूल गया अपने पर कृपा करने को लिए भूल गया है, ऐसी बात लेना। तुमको वचनगोचर सुख प्राप्त होगा, कैसा सुख प्राप्त होगा? वचनगोचर सुख प्राप्त होगा, यानी आत्मा में रत संतुष्ट और तृप्ति हो जाने से इसका टोटल क्या आएगा, कहाँ आएगा कि सुख में आएगा, कैसा सुख आएगा तुम बता नहीं सकेगा, भाषा से अनुभव में अनुभव करेगा सुख का, लेकिन वो सुख कहने के लिए तेरे पास शब्द नहीं रहेगा, क्या बताऊं, शब्द में आता नहीं है। इतना सुख हुआ, इतना मैं सुखी हुआ, इतना सुखी हुआ कि मैं बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, इतना सुख हो गया। और संसार के किसी सुख की मुझे अपेक्षा नहीं रही, क्योंकि सब दुख थे, सुख नहीं थे। हाँ, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र दिन है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान हमारा देश है, है? और हम स्वतंत्र हुए क्या, इससे स्वतंत्र हुए? कितना कायदा बढ़ गया स्वतंत्रता के बाद में, जितना अंग्रेजों ने बनाया था इससे 100 गुना बीजा हो गया। स्वतंत्र हुए कि स्वतंत्र हुए? तुमको रास्ता पर नहीं चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए, स्वतंत्र हो गया। तुम तुम्हारी कलम से चाहे जैसा तुम्हारे वही खाता में लिख सकते नहीं हो, तुम तुम्हारा जैसा पैसा है चाहे जैसा उपयोग कर सकते नहीं हो, सब है स्वतंत्रता ही के स्वतंत्रता ही, पैसा भी तुम्हारा, वही खाता भी तुम्हारा और कलम भी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता इसमें कहीं भी नहीं है। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता, और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयं देखेगा, देखेगा मैंने अनुभव करेगा। हाँ, और ऐसे अनुपम सुख को, वचनगोचर सुख को तुम उसी क्षण वर्तमान में ही अनुभव करेगा, उधारी का व्यापार नहीं है। आज धर्म किया पर सुख अगले भव में मिलेगा वो बात नहीं है, अभी धर्म किया अभी सुख की प्राप्ति होगी। धर्म स्वयं सुख शांति स्वरूप है, पर वो रोकड़ा है, हार्ड कैश, उधारी एक समय का भी उधारी, एक सेकंड का भी उधारी नहीं है उसमें, उसी कर्म वर्म बेचारे भग जाएंगे, क्या
भग जाएंगे,
कर्म खड़ा रहेगा नहीं, कर्म तो मच्छर जैसे है, सिंह सोता है तो हजारों मच्छर बैठता है उस पर, पर थोड़ा करवट बदलता है तो भगने लगता है, जगह तो क्या हो जाए, नींद में भी करवट बदलता है ना तो मच्छर को उड़ना पड़ता है, तो तुम तो सिंह हो, तुम कोई मामूली है
नहीं।
तो कुछ है ही नहीं ने, तुझे स्पर्शता ही नहीं है ने, संयोग तेरे है ही नहीं, वियोग तेरे है नहीं, कोई तेरा है ही नहीं ने, बातों में कोई तेरा है नहीं, तेरा है वहां तक अपेक्षा रहेगी, पर अपेक्षा जिस स्थान में है उसकी उपेक्षा हुए बिना तुमको तेरा स्वरूप का पता, तेरी महानता का पता चलेगा
नहीं
है। और उस सुख को उसी क्षण तू ही स्वयं देखेगा, दूसरों से मत पूछ, और क्या है कि तुमको दूसरों से पूछने का जरूरत पड़ेगा नहीं, उनको धर्म हुआ के नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हुआ के नहीं हुआ, सुख मिला के नहीं मिला, वो किसी को पूछना पड़ेगा
नहीं।
लोग हमको सम्यक दृष्टि कहे तो हम सम्यक दृष्टि, और सब लोग हमको मिथ्या दृष्टि कहे तो हम मिथ्या दृष्टि, ऐसा होता है क्या?
नहीं, ऐसा नहीं होता।
कोई जरूरत नहीं है, हम जो है सो है, हमारा सुख को हमारे भीतर में अनुभव करते हैं और इसके लिए किसी को पूछने की हमें जरूरत नहीं है। ये पूछते हैं लोग योग का, वो मुमुक्ष मिले थे वहाँ बम्बई में, उनको शांति बहुत होती है अंदर, इसमें इतनी शांति आती है, इतनी शांति आती है, तो हमको सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया, कि तुम पूछते हो ये बताता है कि तुमको हुआ
नहीं है,
नहीं है। गड़बड़ होती है, मान्यान प्राक्षी, तुम दूसरे को पूछेगा नहीं, पूछने की तुझे जरूरत लगेगी
नहीं,
नहीं। ऐसी बात है यहाँ तो।